मैं मुबल्लिग बनूं सुल्तों का, खूब चर्चा करूं सुल्तों का, हो करम बहरे खाके मदीना।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے دریافت فرمایا، پوچھا تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ تمہاری اور تمہارے اہل و عیال فیملی اور تمہارے اعمال ایکشن کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال فیملی گھر بار مال ویلتھ اعمال ایکشن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین بھائی ہوں، جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات ضرورتیں کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، یہ کبھی میں کندھا دوں اور کبھی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں۔ پیارے آقا فرماتے، یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے جو کہا کہ بھائی میں یہ کروں گا۔ اہل و عیال جو تمہارے بھائی کے طور پر میرے آقا نے بیان کیا کہ یہ تمہارے جیسے کہ تین چیزیں تمہارے تین بھائی ہیں، ایک نے تو یہ جواب دے دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے، پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے، تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے، میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو تمہارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، تم الگ راستے ہم الگ راستے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، یہ بھائی دراصل اس کا مال ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے،
یقیناً تم بھی میرے حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال و مال کا جواب بھی سن لیا، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے یہ کہے، میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت گھبراہٹ سے بچاؤں گا، جب حساب کا دن آئے گا تو میں تمہارے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا۔ یہ اس کا عمل ہے، یہ جسے جواب دیا یہ کون ہے؟ یہ اس کا عمل ہے۔ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہی ہے۔ بڑا حقیقت والا جو ہمارے سامنے ایک ارشاد بیان ہوا ہے، حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جن میں تینوں چیزیں جو ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، می اینڈ مائی فیملی، اوکے، میں اور میری فیملی، دوسری میرا مال، تیسرا میرے اعمال۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تینوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جب تمہارا آخری وقت ہوگا تو تمہارے اہل و عیال کا کیا حال ہوگا، وہ بہت زیادہ تمہیں قبر تک دفن کر دیں گے تمہارے پیچھے، لیکن جو آگے کا سفر ہے، آگے کا سفر ہے، اس میں تمہاری فیملی تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ چھوڑ کر آ جائیں گے۔ اس کو آپ اس حدیث سے بھی سمجھیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ، اس کے فیملی ممبر، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ یہاں پر جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں، یہ تین چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے فیملی ممبر ہیں اور ہمارا مال ہے۔ جس نے برے حالات میں، وہ مطلب برے حالات بھی کہوں یا میں یوں کہوں کہ جو انتہائی نازک حالات میں، کہ جب ہم اکیلے ہوں گے اس وقت ہمیں بہت حاجت ہوگی، اور وہ ہوں گے اعمال، اس وقت کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ جس نے دنیا ہی میں ہمیں چھوڑ دینا، مال تو کہہ دے گا کہ تو قبر میں گیا، تو جدا میں جدا، تو زمین میں چلا گیا میں اوپر رہ گیا، میں دنیا میں رہ گیا تو تیرا آگے کا سفر ہے، اور یہ اتنی ریئلٹی ہے ہماری زندگی کی۔ مگر شیطان نے ہمارے دل و دماغ کے اوپر ایسے پردے ڈالے ہوئے ہیں، آنکھوں پر ایسے پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ اتنی خوبصورت سی ریئلٹی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارا سارا جینا اس وقت، میں جنرل بات کرتا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں کرتا، ہمارا تقریباً سارا جینا ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے اور ہمارے مال کے لیے۔ اعمال کے لیے جینے والے کتنے کہ جو صبح اٹھیں تو ان کی دھون ہو کہ میں نے اعمال، یعنی جس کو اعمال درست کرنے کی چاہت ہوگی، جس کو اعمال درست کرنے کی سوچ ہوگی، جو اپنے اعمال کو بہتر کرے گا، اس کو پتا ہے کہ یہی میرے ساتھ قبر میں رہیں گے، تو میں نیکیاں، یعنی اعمال سے میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میری مراد یہ نیکی، ایک ایک نیکی، جس طرح ہم ایک ایک پیسے کی فکر کرتے ہیں نا، ایک ایک پاؤنڈ کی ہم فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کیا ہم اسی قدر نیکی کی فکر کرتے ہیں؟ ایک ایک نیکی، یقین مانے، اور جنہوں نے ایک ایک نیکی کے لیے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں نا، میں ان کا ایک آپ کے سامنے زندگی کا ایک خیال پیش کرتا ہوں، ایک آئیڈیل سچویشن پیش کرتا ہوں، کہ جو اپنی زندگیوں کو نیکیوں کے ساتھ گزارنے کے ساتھ، کہ بس یہ ایک ایک نیکی کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس عمل کے دوران آپ کی فیملی اور آپ کا مال نارملی ڈسٹرب نہیں ہوتے، मैं वो आपको अमल बताने जा रहा हूं, वो एक अंदाज बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमने इस वक्त जो अंदाज इख्तियार किया है ना, इसमें माल और नॉर्मली फैमिली तो हमने कवर करने की कोशिश की है, मगर आमाल लूज हो गए। लेकिन जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, अगर उस पर गौर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आमाल तो बेहतर होंगे, लेकिन आपकी फैमिली और आपका माल भी कहीं नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, जो एक एक नेकी के लिए कोशिशें करता है या एक एक नेकी की जिसके नजदीक अहमियत होती है, अव्वल तो उस पर ही वो मालूमात हासिल करता है कि किन किन आमाल में कितना कितना सवाब है। मिसाल के तौर पर हम जैसे दुकान खोलते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, हम लोग जनरल शॉप खोलते हैं, मैं एक जनरल शॉप की बात करता हूं, ठीक है, हमें पता होता है कि यार ये आइटम रखूंगा तो इसका नफा ज्यादा है, ये आइटम रखूंगा तो नफा कम है, इस आइटम में नफा बराबर बराबर में है, ये आइटम इतनी महंगी बिकती है, ये आइटम इतनी महंगी बिकती है, इसमें इतना रेशियो प्रॉफिट, इतना रेशियो प्रॉफिट, सारा रेशियो प्रॉफिट। जब तक हमें रेशियो प्रॉफिट का कि इससे मुझे फायदा कितना होगा नहीं होता, हम आइटम खरीदते नहीं है, दुकान पर रखते भी नहीं है। कोई कहेगा यार रख लो आप, या जगह घेरेगी या चीज तो बिकेगी, तो नहीं बिकेगी तो दो पैसे कम में बिकेगी, क्या फायदा ऐसा लेने का। आपको मार्केट की नॉलेज है, जब मार्केट की नॉलेज होती है तो आप उसको सामने रख कर खरीदो फरोख्त करते हैं। जब नेकी के मामले में हमें नॉलेज होगी ना, तो हम इंशाल्लाह उसको सामने रखकर अपनी इबादत का और अपनी नेकियों का स्केड्यूल बनाएंगे। अगर हमें पता हो कि तहज्जुद में नेकी कितनी है, उसको प्रायोरिटी बेस पे ले लेंगे। फिर हमें हमें कम से कम ये हमें ये पता हो कि नमाज की फजीलत कितनी है, तो नमाज छोड़ेंगे नहीं। नमाज की अहमियत कितनी है, जमात की अहमियत कितनी है, तकबीर उला की अहमियत कितनी है, पहली सफ की अहमियत कितनी है, यानी एक नमाज की अगर हम सिर्फ बात करें, एक नमाज के चलो मैं आपके सामने रखता हूं, सिर्फ जस्ट नमाज, सिर्फ जस्ट नमाज की बात करें तो मस्जिद में आकर अजान सुनना उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अजान सुनकर उसका जवाब देना इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, सवाब है, ठीक है ना। इसी तरह पहली सफ में नमाज पढ़ना इसका अपना सवाब है। फर्ज से पहले सुन्नत कबलिया यानी बिफोर द फर्ज जो नमाज है, जोहर की जो चार सुन्नतें पहले पढ़ना, तो चार सुन्नतें पहले पढ़ना भी सुन्नत मौकदा है, इसका अपना सवाब है, फर्ज नमाज का अपना सवाब है, इसके बाद जो सुन्नत नफल है उसका अपना सवाब है। अब सिर्फ नमाज में हम मस्जिद में आते हैं, इत्तेकाफ की नियत करते हैं, इसका अपना सवाब है। जब हमें पता होता है ना कि ये कैटेगरीज हैं, ये सवाब है, तो हम पूरे के पूरा सवाब लेकर लौटने की कोशिश करेंगे। जैसे एक दुकानदार अपने पूरे का पूरा नफा लेने की कोशिश करता है कि जितना कम ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं अपना नफा निकाल लूं। तो अब चूंकि माल चाहिए तो माल लेने के लिए सारी कोशिशें, सारी एक्सपर्टीज हमारी यूज हो जाती हैं, मगर ये माल यहीं रह जाएगा, तेरा रास्ता जुदा मेरा रास्ता जुदा, ये अल्फाज याद रखिएगा। माल का, माल ने एक स्टेज पर आकर हमको ये कहना जरूर है कि तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, दोनों के रास्ते जुदा हो जाएंगे। और जिसने कब्र में आना है, आगे का रास्ता हमें दिखाना है, हमारी मदद करनी है, नामा आमाल को वजन करना है, उसको भारी करना है, ये सारा कुछ करना, वो है हमारे आमाल। आमाल के बारे में हमारी ला इल्मी और ला ताल्लुकी कितनी है, यानी हम भी कैसे अजीब लोग हैं कि जिस दोस्त से जबरदस्त वफा की उम्मीद है और जबरदस्त वफा वाला दोस्त है, उससे हमारी बेवफाई हो रही है। यानी जिसने हमारे साथ वफा करनी है हम उसके साथ वफा नहीं कर रहे, और जिसने हमारे साथ बेवफाई करनी है हम उसके साथ वफा निभाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसलेस, इसको मतलब कि आप क्या नाम दे देंगे, यही नाम देंगे कि ये अक्लमंदों का काम नहीं है। फिर इसी तरह कारोबार के लिए जाते हैं, मैंने कहा ना कि मैं आपको एक अर्ज करूंगा, इंशाल्लाह ना आपके वेल्थ को इतना नुकसान होगा ना आपकी फैमिली को नुकसान होगा, और आमाल जो कि हमारे साथ रहने हैं उसमें इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। क्योंकि हमारा जो इस वक्त लाइफ स्टाइल है वो ये है कि आमाल नजरअंदाज हो रहे हैं, माल पहले है, फैमिली सेकंड है, माल के चक्कर में फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज की हुई है, और फैमिली यूं मुतमईन है कि चलो यार खर्चा मिल रहा है, फैमिली मुतमईन है। अगर आप टाइम कम देते हो और कमाते हो तो फैमिली आपसे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। इवन कि अगर आपके किसी अजीज का इंतकाल भी हो जाए और अगर आप कहो कि मैं नहीं आ सकता थोड़ा कारोबार, और आपको पता है मैं तो घर में खर्चा देता हूँ या तनख्वाह कट जाएगी, पैसे कम हो जाएगा, तो अच्छे खासे फैमिली मेंबर कहेंगे नहीं नहीं बेटा रहने तो हम लोग हैं ना, हम लोग कर लेंगे, तो खर्चा नहीं मतलब तुम पैसे बचाने की बात करो, अभी जनाजा तो हो ही जाएगा, तदफीन भी हो ही जाएगी, तुम वहां से दुआ कर लो ना, फातिहा कर लेना, ये सारे के सारे हमको जो है ना बोले तुम उधर ही रहो, हमको पैसे भेजते रहो, है नी, फैमिली भी हमसे कंप्रोमाइज कर लेती है पैसे के चक्कर में, और हम भी फैमिली कंप्रोमाइज कर जाते हैं पैसे के चक्कर में, और उसके चक्कर में कभी माँ का जनाजा रह जाता है, कभी बाप का जनाजा रह जाता है, कभी बेटे का जनाजा रह जाता है, कभी खुशियां रह जाती हैं, कभी गम रह जाते हैं, दुख सुख में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी रिश्तेदारियां निभानी होती हैं, सिले रहमी निभानी होती है, बहुत सारे नेकी के काम फैमिली के साथ करने होते हैं, वो सारे के सारे हमारे वन साइड रह जाते हैं, क्योंकि हमें माल कमाना है और उधर मतलब हमने अपने मुल्क में या अपनी फैमिली को अपने घर वालों को भेज देना है। इन सारे कंप्रोमाइज के पीछे जो चीज छुपी हुई है ना वो है माल। हाँ आप अल्लाह की राह में सफर करें, आप निकी की दावत के लिए बाहर हो सफर करें, 12 माह के मदनी काफले में सफर करें, आप किसी बाहर मस्जिद में इमामत कर रहे हो कि निकी के काम कर रहे हो और घर में कोई ऐसी किस्म के वाकया हो जाए तो फौरन कहेंगे जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, अरे भाई मेरा का यहाँ तबलीग दीन है, निकी की दावत है, पूरा सफर मेरा गुजर रहा है, नहीं नहीं अल्लाह ने यूं थोड़ी को फरमाया, अल्लाह ने यूं थोड़ी को फरमाया, फिर हमको बताना शुरू कर देंगे और उसमें कई बातें झूठ पर मबनी होती हैं। ये अजीब हालत है, माल के साथ इतनी वफादारी, माल के साथ इतनी मोहब्बत, माल के साथ इतनी चाहत है, मैं वो बयान नहीं कर सकता। माल 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 माल, और ये हदीस पाक का ये जो लफ्ज है ना जिसका मैंने आपको उर्दू तर्जमा दिया, बहुत यकीन माने इबरत वाला लफ्ज है कि तेरे रास्ते जुदा मेरे रास्ते जुदा, ये माल की हकीकत है, तेरा रास्ता जुदा मेरा रास्ता जुदा। जो फैमिली हमें मतलब के बाद में भी बोलेगी कि यार अच्छा आदमी था, साल में एक दफा याद भी कर लेगी इस साले सवाब के लिए को बरसी मरसी बना लेगी, तीजे तक ही कम से कम याद कर लेंगे, वो फैमिली भी इग्नोर हो रही है इस माल के चक्कर में, और दोनों के चक्कर में अमाल इग्नोर हो रहे हैं, नेक अमाल इग्नोर हो रहे जो हमें लेके जाएंगे आगे तक। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ले लिखते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, एक जनाजा चार कंधा देने वाले, चार वापस आ जाते हैं एक वहीं रह जाता है, लेकिन हमें इस चीज की कोई बजाहिर इतना परवाह नहीं है कि ये है क्या। अल्लाह ताला हमें इबरत लेने वाला जहन अता फरमाए, सबक लेने वाला जहन अता फरमाए, और एक काश कि हम अमल की तैयारी, ये कब्र में चीज काम आएगी प्यारे इस्लाम में, अमल है ना बहुत, इसका मेन टाइम शुरू हो रहा है जब हम कब्र में जा रहे हैं, जब हम कब्र में जा रहे हैं तो उधर का जो एहसास है ना कब्र का, ये बहुत जरूरी है कब्र का एहसास। हमें बदकिस्मती के साथ उस कब्र का एहसास नहीं है, बुजुर्गों ने इसके बारे में हमें इरशाद फरमाया। मैं आपको एक इबरत वाला वाकया सुनाता हूँ, वो हिकायत है पूरी सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु की। अब देखिए हम किस कब्र को भूल, क्योंकि अमाल कब्र में आएंगे ना, फिर आगे हमारे लिए रास्ते हमवार करेंगे। जैसे मैं आपको उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात बताऊं, सैयद उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब कब्र का तस्करा होता ना तो फूट फूट कर रोते थे। कोई कहता कि इसके अलावा और भी तस्करे होते हैं मगर आप इतना नहीं रोते जितना कब्र की बात सुनकर रोते हैं, तो आप इरशाद फरमाते कि यही पहली मंजिल है। तो कब्र जिसको हम भूल गए, मैं इसके बारे में आपको एक चीज बताता हूँ। हजरत सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। जब लोगों ने सफे बना ली तो आप पीछे चले गए और वहां एक कब्र के पास बैठकर गौर व फिक्र में डूब गए। आपके दोस्तों ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो मैयत के वली हैं और आप ही पीछे चले गए। फरमाया, अभी अभी कब्र ने मुझे पुकारा और मुझे बुलाया और बोली, ए उमर, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वाले के साथ क्या बर्ताव करती हूं। मैंने उस कब्र से कहा मुझे जरूर बता। वो कहने लगी जब कोई मेरे अंदर आता है मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूं, इसका खून पी जाती और इसका गोश्त खा जाती हूं। क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं इसके जोड़ों के साथ क्या करती हूं? What I do with his joints? मैंने कहा यह भी बता। तो कहने लगी कांधों को बाजुओं से, घुटनों को पिंडलियों से, I separate his shoulders from arms, knees from shins and shins from feet। इतना कहने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिचकियां बन गईं, अब रोने लगे। जब कुछ अब रुके तो कुछ इस तरह बयान फरमाया, ए इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में सख्त गुनाहगार होने के बावजूद साहिब इख्तदार है वो आखरत में इंतहाई जलील और ख्वार होगा। जो इस जहां में मालदार है वो आखरत में फकीर होगा। इसका जवान बूढ़ा हो जाएगा और जो जिंदा है वो मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारे तरफ आना तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। इस तमाम बातों को और मेरे आका के इरशाद को सामने रखिए, माल, अहलो याल और आमाल, इन सबको सामने रखिए, कब्र में आमाल आएंगे। मेरा आका उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते रहमतुल्लाह ताला ले, दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि तुम जानती हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहां गए तिलावत कुरान करने वाले? कहां गए बेतुल्ला का हज करने वाले? कहां गए माह रमजान के रोजे रखने वाले? कब्र के कीड़ों ने इनके गोश्त का क्या अंजाम किया? अल्लाह ताला की कसम, ये दुनिया में आराम दे नरम नरम बिस्तरों पर आराम करते थे, लेकिन अब अपने घर वालों और वतन को छोड़कर राहत के बाद तंगी में हैं। इनकी बेवाओं ने दूसरे निकाह करके फिर से घर बसा लिए, इनकी औलाद गलियों में दर बदर फिर रही है, इनके रिश्तेदारों ने इनके मकानात पर कब्जा कर लिया और मीरास आपस में बांट ली। अल्लाह ताला की कसम, इनमें बाज खुश नसीब भी हैं जो के कब्रों में मजे लूट रहे हैं, जबकि बाज ऐसे हैं जो कब्रों में अजाब में गिरफ्तार हैं। अफसोस, सद हजार अफसोस, ए नादान, जो आज मरते वक्त कभी अपने बाप की, कभी अपने बेटे की, कभी सगे भाई की आंखों को बंद कर रहा है, इनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन पहना रहा है, किसी के जनाजे को कंधे पर उठा रहा है, किसी को कब्र के तंग व तारिक गरे में दफना रहा है। काश काश मुझे इल्म होता कि कौन सा गाल कब्र में पहले सड़ेगा। फिर हजरत सईद उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, रोते रोते बेहोश हो गए और एक हफ्ते के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले गए। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह करीम आपकी और हम सबकी बेहिसाब मगफरत फरमाए। मौत की सख्ती बहुत सख्त है, नेक अमाल करके अपनी मौत की सख्ती को दूर करने की कोशिश करें। ये सब होगा अल्लाह की रहमत से, कब्र रोशन होगी अल्लाह की रहमत से, कब्र जन्नत का बाग बनेगी अल्लाह की रहमत से, ईमान सलामत रहेगा अल्लाह की रहमत से, नजाक में सख्ती आसान हो जाएगी अल्लाह की रहमत से, जबान पर कलिमा जारी होगा अल्लाह की रहमत से, हमारा कफन जन्नती कफन में बदल सकता है अल्लाह की रहमत से, ये सब होगा अल्लाह की रहमत से, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला मिल सकता है अल्लाह की रहमत से, हमारे नामाए अमाल ना खुलें अल्लाह की रहमत से, हमारी नेकियां जाहिर हो गुनाह छुपा दिए जाएं अल्लाह की रहमत से, मिजान पर हमारे अमल वजन हो जाएं, नेकियां भारी हो जाएं, ये किससे होगा? अल्लाह की रहमत से। पुल सिरात पर इस्तेकामत मिल सकती है, साबित कदमी मिल सकती है, हम खैर से पुल सिरात पार कर सकते हैं, किसके करम से? अल्लाह की रहमत से। हमें जन्नत में दाखिला मिल सकता है, किसकी करम से? अल्लाह की रहमत से। अल्लाह की रहमत पाने का जो बेहतरीन जरिया है वो नेकी है, उसकी फरमा बरदारी है, उसकी बात मानना है, उसको राजी करना है। मैं उससे नजा की सख्ती में आसानी चाहता हूं मेरे रब से, तो भी उसको राजी करके लूं कि या अल्लाह करम कर दे, जिंदगी भर ना फरमानी करूं, उसकी एक बात ना मानू। जिसे लोग कहते हैं जनाब अल्लाह माफ करेगा, अरे अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफार है, वो कहार भी है, वो जब्बार भी है। ये कौन सी बंदगी का फलसफा लेकर आ गए कि दिन रात गुनाह करें, नमाजें ना पढ़ें, इबादत ना करें, तिलावत ना करें, गुनाह करें, शराबे बेचें, जुए का कारोबार करें, शराबों का कारोबार करें, शराबें बनाएं, शराबें पिलाएं, शराबों का धंधा करें, शराबे दोगों में आम करें, शराबों की कमाया खाएं, ये सारे काम करके तोबा भी ना करें। जो ये बात जानते हैं कि हमारे घर का ये मर्द शराब बेचता है, शराब बेचता है, शराब का कारोबार करता है, शराब पिलाता है, अपनी दुकान पर शराब का काम करता है, जिस शराब को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दे दिया, जिसकी आमदनी हराम है, ये वो करता है और उसकी फैमिली भी उसके साथ बस करके और मतलब खुशी के साथ वक्त गुजार रही है। कमाल है, मुझे तो इसी फैमिली पर हैरत है। मुझे तो ऐसे मौके पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो बात याद आती है, क्या फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि मर्द अपने घर से जब रोजगार कमाने के लिए सुबह निकलता तो उसके बीवी बच्चे उसको कहते थे कि हमारे मामले में अल्लाह से डरना, याद रख हम भूखे रह सकते हैं, जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, हराम मत कमा कर आना। क्या कहते घर वाले? हराम मत कमा कर आना। मैंने किताबों पढ़ा है फैमिलियां कई कई दिनों तक फाके करती थी, लेकिन अपने घर के मर्दों को कहती थी कि हम फाका कर लेंगे, आप जाते हैं आपको कारोबार नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, मगर याद रखिएगा हराम घर में मत लाइएगा, हम रुखी सुखी से गुजारा कर लेंगे। हराम के तर निवाला जो से हलाल की सूखी रोटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन मैं नहीं कहता अच्छी है, मैंने ये जुमला नहीं कहा कि हराम के तर निवाले से हलाल की सूखी रोटी अच्छी है, अच्छी भी नहीं कहूंगा मैं, कहता हूं कंपैरिजन नहीं है, कोई तकाबुल नहीं है कि ये हराम का तर निवाला आज तुम्हारे हलक से उतर गया और हलाल की सूखी रोटी उतर नहीं रही है, लेकिन कल जहन्नम की सजा पाएंगे अल्लाह ना करे, इस हराम की वजह से जो गले के अंदर कांटे फंसेंगे ना जहन्नम के, फिर पता चलेगा कि हराम की रोजी कैसी होती थी। अल्लाह की पनाह, हैरत है, ये हैरत की बात है, वाकई कमाल है। आपको पता चले मुसलमान सुअर बेचता है, आप उसके बारे में क्या ख्याल करोगे? मैं नहीं समझता कि आप उसको कोई अच्छा इंसान समझेंगे। एक आदमी सुअर की आमदनी को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर शराब की आमदनी को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? अल्लाह ने शराब को भी हराम किया, अल्लाह ने जुए को भी हराम किया, अल्लाह ने सुअर भी हराम किया है। कुरान में जुए का जिक्र भी है, कुरान में शराब का जिक्र भी है, कुरान में सुअर का जिक्र भी है। ये बिल्कुल कमाल की बात हो गई है। और बात क्या है? माल, मकसद क्या है? असल में इसके पीछे जिस चीज ने हमको अंधा किया है वो है क्या? माल। ठीक है, शराब बेचकर नहीं करता, आप जैसे शराब बेचने वाला बोलेगा कि ठीक है मैं शराब बेचता, किसी को धोखा तो नहीं देता। भाई धोखा देने वाला गलत कह रहा है, तू कौन सा सही कर रहा है? अगर धोखा देकर भी अगर कोई किसी को माल कमा रहा धोखा है, तो धोखा तो काफिर को भी जायज नहीं है। अगर कोई धोखा देकर माल कमा रहा है वो भी गलत कह रहा है, चोरी करके माल कमा रहा है वो भी गलत कर रहा है, डाका माल के माल कमा रहा है वो भी गलत कर रहा है, रिश्वत लेकर माल कमा रहा है वो भी गलत कर रहा है, सूद लेकर सूद खाता है वो भी गलत कर रहा है, सब गलत ही करे। लेकिन अगर कोई अकल की बात करो तो ये है कि क्या गलत काम कभी एविडेंस बनता है? फिर आप कहे जनाब हम तो इस आमदनी से नेकी का काम करते हैं। भाई आप नेकी का काम करो, अल्लाह आपको और तौफीक दे, मस्जिद बनाओ, मस्जिद की खिदमत करो, बेवाओं की मदद करो, गरीबों की मदद करो, सदका व खैरात करो, मिस्किनों की मदद करो, परेशान हालों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, किसने मना किया है? बेघरों को घर दो, बेचैनों को चैन दो, बेकरारों को करार दो, बेसुकूनों को सुकून दो, अल्लाह की रिजा के लिए करो, तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करो, इन पर माल खर्च करो, किसने तुमको मना किया? अल्लाह ताला तुमको इसका अजर देगा, सवाब देगा, मगर ये जो कुछ करना है हलाल के माल से करो, हराम कमा कर ये करना। कि हदीस पाक में है कि हराम माल से किया गया सदका अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह पाक है, पाक माल कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक है, पाक माल कबूल फरमाता है। हराम माल का सदका कबूल नहीं, हराम माल खर्च करे बरकत नहीं, हराम माल छोड़ के मरेगा अजाब कबर का सबब। क्या हराम माल में कोई एक चीज खाओ तो नहुसत, दवाई लो तो शिफा नहीं मिलती। एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, घर में बेसुकूनी, हराम माल घर में, अब खलास, आपने अपनी बेचैनी, बेकरारी, बदअमनी, लड़ाई झगड़े, इन सब को घर में आने की दावत। ये पैसा जो हराम का घर में आता है ना, ये अपने साथ नहुसत लाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह एक नोट के साथ लगी राहत नजर नहीं आती ना, इसी तरह एक नोट के साथ लगी नहुसत भी नजर नहीं आती। मगर ये जब नोट हलाल से आती है ना, तो अपने साथ राहत और मोहब्बत लाती है, और जब ये नोट हराम से आती है ना, अपने साथ नहुसत और बर्बादी लाती है। ये तस्वुर अल्लाह करे मुसलमान की समझ में आ जाए कि जो गोश हराम से पला भरा उसके लिए जहन्नम की आग ही बेहतर है। नशो नुमा पाएगा जो गोश्त, परवरिश होती है जिसकी हराम के माल से, अपनी औलाद की हराम के माल से परवरिश करना। तो फैमिली कैसे अफोर्ड करती है, वो समझाए, वो बात करे और रुकी सुखी में गुजारा करे। स्पेशली मैं कह रहा हूं कि जो भी मुसलमान बदकिस्मती के साथ हमारे इन तमाम तर एरियाज के अंदर, खुदा ना खास्ता जो शराब के कारोबार में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। सच्ची तोबा करें और इससे बिल्कुल नजात हासिल करें, और नजात हासिल करके अल्लाह के हुजूर भी सच्ची तोबा कर लें कि अल्लाह ताला गुनाह माफ करने वाला है, क्योंकि इसका अजाब बहुत सख्त है, इसका अजाब बहुत सख्त है और ये बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। मैं आपको चंद चीजें अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की बर्बादी से बचा के रखे। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जरा गौर कीजिए कि ये कब्रों का जो हाल हमारे सामने बयान हुआ, इसमें हमारे लिए कितनी बड़ी इबरत है, कितना बड़ा सबक है, कितना बड़ा इसमें दर्स है। मुझे मिनाजुल आबिदीन में भी एक तरह का वाकया याद है, और चोर ने कब्र में चेहरे फिरे हुओं को बताया था, कफन चोर ने। ये कफन चोर एक पूरा एक बदकिस्मत लोगों का प्रोफेशन है कि जब मुर्दे को दफन करते हैं ना, ये मुर्दे को तारते हैं, और जब मुर्दे को दफन करके लोग चले जाते हैं तो ये इनकी कब्रें खोलते हैं और इनका कफन चोरी कर लेते हैं। तो ये अल्लाह की मर्जी, अल्लाह चाहे तो लोगों पर कब्रों के हाल जाहिर फरमा देता है ताकि लोग इबरत लें। उसे किताबें भरी हुई हैं, किताबें से भरी हुई, बहुत किताबें, शरह सुदूर हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला की किताब, इसमें कई वाकियात और भी कई वाकियात, ज़वाजिर एंड इख्तिलाफिल कबाइर अरबी किताब है, इसमें भी इस तरह के कई वाकियात नकल किए गए जो कब्रों में मुर्दों के साथ हुए थे और लोगों पर उस कब्रों के हाल जाहिर किए गए। इस पर एक बुजुर्ग का मुझे वाकया याद आ रहा है कि उन्होंने एक बुजुर्ग से पूछा कि क्या बात है कि जब भी कब्र के इस तरह के अजाब के वाकया जाहिर किए जाते हैं, मुसलमान के क्यों किए जाते हैं, कभी किसी काफिर का अजाब क्यों जाहिर नहीं किया गया? तो हजरत ने फरमाया कि काफिर के तो अजाब में शक ही नहीं है ना, गैर मुस्लिम को तो मरते ही उसके लिए तो अजाब ही अजाब है ना, तो उसके अजाब क्या बताना है, उसके लिए तो हमारा नजरिया यही है कि जो कुफर पर मरेगा उसके लिए अजाब ही अजाब है। यहां मुसलमान का अजाब बताया जाता है ताकि मुसलमान इसे इबरत हासिल करे, और सिर्फ अजाब ही बताया जाता, कई दफा कई वाकयात ऐसे जिनमें इस पर अजाब क्यों हो रहा है इसका सबब भी बयान किया जाता है ताकि हम लोग इबरत लें। نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کا حال ملاحظہ فرمایا اور اس میں مطلب کہ مردے پر عذاب ہو رہا تھا، میت پر، آپ نے اس کا بھی حال بیان کیا کہ اس کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کے سبب کیا ہے. منہاج العابدین میں ایک چور کا میں نے واقعہ پڑھا، ایک بزرگ کے پاس انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اتنی اتنی قبروں سے کفن چرایا، سب کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بات بیان کی، کہا کہ جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا. توکل جس کو کہتے ہیں نا، توکل، اللہ پر بھروسہ نہیں تھا. اور امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ توکل کا اہم ترین جو معاملہ ہے نا وہ رزق کے معاملے میں، رزق، روزی، معیشت، آمدنی، ارننگ، اس پر بڑا توکل کا معاملہ ہے. اور میں نے بعض ایسے بدقسمت قسم کے لوگ دیکھے ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں. شاید آپ کو بھی واسطہ پڑا ہو، اللہ نہ کرے کوئی سننے دیکھنے والے سے میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، کہ جب اس کو سمجھائے نا کہ یار یہ سود کا کام ہے، یہ رشوت کا کام ہے، یہ حرام کام ہے، یہ شراب کا کام ہے، یہ فلاں کام ہے، یار یہ چھوڑ دو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں حرام ہے، ناجائز ہے، میری بھی نیت ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں اس کو چھوڑ دوں، بس یار آپ دعا کرو اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. ارے خدا کے بندے، تو اللہ سے کنڈیشن کر رہا ہے کہ اللہ میرے لیے کوئی راستہ دوسرا دے گا تو میں یہ راستہ چھوڑوں گا، جب تک میرے کو دوسرا راستہ ملے گا نہیں میں چھوڑوں گا نہیں. ارے خدا کے بندے، تو رب پر بھروسہ کر، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک راستہ بند کر، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے تجھ پر 100 دروازے کھول دے گا. اللہ سے تو کنڈیشن کرتا ہے گویا کہ، نانسن، بے وقوف انسان ہے یہ، اس کو سمجھنا چاہیے میں کر کیا رہا ہوں. واللہ خیر الرازقین، وہ اللہ ہے جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ پر بھروسہ کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان تک نہیں جاتا. تم جھوٹ بول کر کمانے پر بھروسہ کرتے ہو، حرام مال بیچ کر تم کمانے پر بھروسہ کرتے ہو کہ تم جب تک شراب نہیں بیچو گے تمہاری دکان نہیں چلے گی، تم جب تک یہ 2 نمبر کا کاروبار نہیں کرو گے تمہارا گھر نہیں چلے گا. کیا ہو گیا عقل کے ناخن لو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، اے دنیا بھر میں دیکھنے سننے والوں، خدا کا واسطہ اس بات پر ذرا غور کرو. یہی بات میں ڈرگس بیچنے والوں کو کرتا ہوں، یہ ڈرگس کا کاروبار کر رہے ہو نا، اللہ سے ڈرو. میں ان کی فیملی کو بھی کہتا ہوں پاؤں پکڑ لو اپنے گھر والوں کے، خدا کا واسطہ لوگوں کی جانوں سے، ان کی جوانیوں سے، ان کی زندگیوں سے کھیلنا بند کر دو. کیوں ڈرگس بیچ رہے ہو؟ زہر ہے یہ، نشہ ہے. ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. یہ شراب بیچنے والے ہیں، یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. کسی کا باپ شرابی ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے، اس کی بیوی سب سڑک پر آ جاتے ہیں، گھر میں مارتا ہے، پیٹتا ہے، شراب کی حالت میں جانے کتنی بار تو بیوی کو طلاق بھی دے چکا ہوتا ہوگا. نہ ماں کو ماں سمجھتا ہے، نہ باپ کو باپ سمجھتا ہے، نہ بہن کو بہن سمجھتا ہے. اتنی موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی بہت باریک باتیں نہیں ہیں. حرام کی باتیں بیان کر رہا ہوں، ناجائز کی باتیں بیان کر رہا ہوں، اور مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کیا کہنا چاہیے. ڈرگس کاروبار کرتے ہیں، ڈرگس سپلائی کرتے ہیں، پیسے ملتے ہیں. ارے تم کس چیز کے پیسے لے رہے ہو؟ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کے سودے کر کے پیسے لے رہے ہو. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کس طرح محنت اور مشقت کے ساتھ پالا، اور تم نے ایک ہفتے کے اندر اس کو نشے کا عادی بنا کر اس باپ کے مستقبل کو آگ لگا دی. اس کے بیٹے کو تم نے ڈرگس کا عادی بنا دیا. کہ آج عورتیں ڈرگس کے عادی ہیں، کسی کی بیوی ڈرگس کی عادی بن گئی، شرابی بن گئی. بیوی، بچیاں، یعنی ہماری لڑکیاں، جی ہاں مسلمان فیملیز کی بات کر رہا ہوں، مسلمان فیملیز کی بات کر رہا ہوں. یہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کئی فیملیز والے، آئی ڈونٹ نو وائی ہم مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، حرام روزی کما رہے ہیں، مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ جس کا پتہ ہے کہ اس کی واقعی حرام روزی ہے، پھر بھی ہماری سوسائٹی میں اس کی عزت کتنی ہے. عزت تقوی والے کی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ متقی ہے. تو ان چیزوں کے نقصان، یہ مطلب دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے والے، ڈرگس بیچنے والے، اللہ کرے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، چھوڑ دیں. معافیا ہے پورا، یہ پورا معافیا ہے. अब आप सोचो किसी का बाप नशे का आदि हो गया, अब उसके घर का हुआ गया, अब जरा सोचे इसकी बीवी क्या करे, तो दिन रात नशे में लग गया है, चुप चुप कर नशा कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, मार रहा होता है, पीट रहा होता है, और बाद वक्त बच्चे बिगड़ जाते, हमें पता भी नहीं चलता, हमें जब पता चलता है हमारे वो बहुत लेट हो गया होता है। मैंने एक शख्स का वाक्य पढ़ा, एक वाक्य सुना था, एक शख्स का वाक्य पढ़ा। वो शख्स एयरपोर्ट पर बैठा अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था और अपने जिंदगी के माजी के उन दिनों को याद कर रहा था जब इसने कमाना शुरू किया, बहुत पैसा कमाया, दुनिया में इसका बिजनेस था, दुनिया में इसकी कंपनीज थी, और ये देख रहा था आज मेरे पास कोई कमी नहीं है, हर तरह से मेरे पास आसाइशें हैं, सहूलतें हैं, दुनिया में घूमता हूं फिरता हूं। इतने में उसकी मोबाइल की घंटी बजी, जैसे उसने मोबाइल अटेंड किया तो सामने उसका भाई था, कहने लगा कि अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो फौरन आ जाओ। अब वो इतने सुहाने ख्यालात में था, थाड़ करके इसके ऊपर सदमे का पत्थर पड़ा, फौरन वो ख्यालात का जो महल का शीशे का जो महल था वो चकनाचूर हो गया। शॉकिंग न्यूज, उसे फौरन अपनी फ्लाइट चेंज और अपने घर की तरफ चला, लैंड किया जहाज, बाहर निकला तो भाई गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। क्या हुआ? बोला चलो चलते हैं, बताओ तो सही क्या हुआ। बोलो चलते हैं। बोला मेरा बेटा कहाँ है। बोला चलो चलते हैं। और वो गाड़ी मेरे घर की तरफ ले जाने के बजाय अपनी घर की तरफ ले गया। मैं कहा भाई अपने घर क्यों ले जा रहे हो। बोला चलो मैं बताता हूँ, घर ले गया। मैं कहा मुझे बताओ वाक्य क्या है। तो किसने कहा कि तुम आने में लेट हो गए, तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी बीवी मर गई है। वो सख्ते में आ गया ना, मेरी बीवी मर गई, इतने अरसे से बीवी से मिला भी नहीं था, बरसों से बाहर था, बेटा पीछे जवान हो गया था। बोला बेटा कहाँ है मेरा। बोला वो जेल में। तो बेटा जेल में, बीवी मर गई, कहानी क्या है, हुआ क्या ये बताओ। कहा के तुम दुनिया में कमा रहे थे और यहां तुम्हारा बेटा नशे का आदि बन चुका था और तुम वहां से पैसे भेजते थे, तुम्हारी बीवी उसको पैसे देती थी खर्च करने के लिए, उसको पता नहीं था कि इसका बेटा अब नशा करता है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी बीवी को पता चला कि मेरा बेटा नशा कर रहा है, उसने सख्ती करनी शुरू की, घर में लड़ाई शुरू हो गई, वो ज्यादा पैसे लेता था कि उसके दोस्तों के लिए भी ये नशा खरीदता था। एक दिन तुम्हारी बीवी ने जिद ले ली कि मैंने इसको पैसे नहीं देने, और उस वक्त इसको बहुत ज्यादा नशे की तलब थी, ये अपनी मां के साथ लड़ रहा था। बोला मां मुझे पैसे दे, मुझे चाहिए। मां को तू कुछ भी कर ले मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। बोला मां मुझे पैसे दे। तो मां मैं नहीं दूंगा। अब वो क्या नशे का पता नहीं क्या होता होगा, अल्लाह ताला आपको हम सबको महफूज फरमाए, पता नहीं इसके दिमाग में क्या ऐसी चीज आ गई। इसने कहा मां देख तू मुझे पैसे दे वरना अबू को मैं बोल दूंगा कि तेरे फना मर से नाजायज तालुक आते। अब ये सुनते ना मां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो बदबख्त तो तेरी मां पर तोहमत लगा रहा है, मेरी पाक दामनी को दागदार कर रहा है। बहुत गुस्से में आ गई ना और फट पड़ी, जा नहीं देती, ये कर ले वो, दोनों में ठीक ठाक लड़ाई हो गई। इस तो उसका दिमाग, जैसी जैसी मां चिल्ला रही थी ना, इसका दिमाग ज्यादा खराब हो रहा था, ज्यादा बिगड़ रहा था, ज्यादा वो तबाही की तरफ जा रहा था, सड़ गया था उसका दिमाग। वो सड़े हुए दिमाग के साथ किचन में गया, किचन में जाकर चाकू ली, चाकू लेकर मां पर धड़ाधड़ वार करने लगा। इधर मार, मां बेटा क्या कर रहा है क्या, मां इधर खून उधर खून, सीने पर मारे, हाथ पर मारे, कमर पर मारे, मार मार कर मां को चीर फाड़ कर रख दिया इस आदमी ने, कत्ल कर दिया इसने अपनी मां का, बदबख्त ने अपनी मां का कत्ल कर दिया, मां मर गई। अब ये भैड़ गया कि ये क्या हो गया, तो मां चीखी चिल्लाए, आसपास वाले आ गए, पड़ोसी, पुलिस को फोन किया, पुलिस आकर नौजवान को पकड़ के ले गई। अब ये उसका तो सब खत्म हो गया ना। बेटा को 18-20 साल का था, अपने बेटे से मिलने गया जेल में। बेटा के बरसों के बाद उसने बेटे को देखा है, बेटा सलाखों के उधर, बाप सलाखों के इधर, दोनों मिले, दोनों रोए और उसने कहा तू तेरी मां का तो कत्ल कर गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, बाप ने जो बोलना था वो बोला। जैसे ही बाप मुड़कर जाने लगा उसने कहा बा बात तो सुनो, मैं जो यहां पहुंचा हूं तो मेरे को पहुंचाने में तुम्हारा कोई हाथ है या नहीं है? जब मैं बचपन में गंदे दोस्तों के साथ बैठता था, मेरा बाप नहीं था मेरे पास जो मुझे रोकता। जब मैं नया नया बुराई की तरफ गया था, मेरा बाप नहीं था जो मुझे डांटता। तुम सिर्फ पैसा कमाने में लग गए थे, तुम्हें क्या पता तुम्हारा बेटा किस कीचड़ में, किस दलदल में चला गया है। ये मिस्टेक जस्टिफाई कर रहा था, गलत कह रहा था। जिनके बाप मर जाते उनके बच्चे को शराबी जुआरी नहीं बन जाते, जिनके बाप दुनिया में नहीं होते उनके बच्चे को मवाली और मतलब डाकू और चोर और क्रिमिनल नहीं बनते। ये जरूरी नहीं है कि बाप सर पर होगा तभी बेटे की अच्छी परवरिश होगी, लेकिन बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। आप देखिए कि एक नशे का आदि अपनी मां का कातिल बन गया और इसने फिर अपनी सारी दौलत सारी जायदाद खत्म कर दी और सब दुनिया की दौलत वौलत कारोबार सब बंद करके ये वन साइड हो गया। कहते हैं किसी मस्जिद का कोना पकड़ लिया, मगर बहुत लेट हो गया था दुनियावी लिहाज से। तो ये नशा जो है ना इंसान को यहां पहुंच, बाद होगा शराब के नशे में बंदा क्या 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 हरकतें कर देता है। अब जिसे इतना मतलब कि अजीब और गरीब किस्म के गंदे से गंदे नशों की आदत पड़ जाए, अगर उसको नशा ना मिले तो फिर उसका हाल यही होता है। बीवी को मारता है, बच्चों को मारता है, चीजें बेचता है, घर का सामान बेचता है। अच्छा फिर ऐसे लोग जो है ना ये कमा नहीं सकते, पता है आपको ऐसे लोग कमा नहीं सकते क्योंकि इनके दिमाग सड़ गए होते हैं, इनके इनके आजा में ताकत नहीं रहती, ये सुस्त पड़े रहते हैं, ये मदहोश होते हैं, इनके अंदर कमाने की ताकत नहीं रहती, इसलिए ये हठ धर्म हो जाते हैं, इनको बैठकर खाने की आदत हो जाती है, ये बाप कमाई पर गुजारा करते हैं, इधर उधर से $2-5 पौंड लेकर गुजारा कर रहे होते हैं, ये कर्जा लेकर गुजारा कर रहे होते हैं, ये भीख मांगकर गुजारा कर रहे होते हैं, ये घर से चोरी करके गुजारा करते हैं। ऐसे होकर घर वाले टेंशन में होते हैं कि पैसे छुपाए तो कहां छुपाएं, चोर तो घर के अंदर रहता है। आप बताओ ये फैमिली कैसे सर्वाइव करती होगी कि जिसका कोई बेटा, जिसका कोई शोहर, जिसके अंदर कोई घर का फर्द शराबी हो गया हो, जुआरी हो गए, फिर ऐसे क्या जुआ खेलते हैं, हया खत्म हो जाती है। ये मैं बता रहा हूं ताकि खुदा ना खास अगर कोई ऐसा नशे का आदि अगर मुझे को देख और सुन रहा है दुनिया में कहीं भी, तो वो इस बात को देखे कि इसका नतीजा ये होता है, खुदा ना खासा मां का कातिल, बहन का कातिल, बीवी बच्चों का ज्यादती करने वाला, बदबख्ती होती है, तंग आकर जब हर तरह से बेजार हो जाते भी कहते खुदकुशी कर लेंगे, हराम की मौत मरता है, फांसी लगा लेगा, ये कर लेगा, फिर हराम की मौत मरेंगे, जहन्नम का इस्तेकाक है खुदकुशी, खुदकुशी हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अगर कोई ऐसे शराब बेचने वाले, जुआ का कारोबार करने वाले, ड्रग्स का कारोबार करने वाले देख और सुन रहे हैं, आप लोग भी खुदा का वास्ता मान जाओ, रुजू कर लो, और अल्लाह ना कर अल्लाह ना कर इस तरह को शराब में, जुए में, नशे में अगर कोई मुब्तला है, अल्लाह से डर कर सच्ची तौबा कर अच्छे और नेक रास्ते पर चल जाए, नेक लोगों के साथ वाबस्ता रहे। अब सोहबत तो मौसरा, सोहबत में असर होता है, तो अल्लाह करे कि हम ये हराम रोजी, ये जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है, इसको छोड़ने में कामयाब हो जाए, शराबी शराब छोड़ने में कामयाब हो जाए, शराब का कारोबार छोड़ने में कामयाब हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब के मामले में 10 बंदों पर लानत फरमाई है। नंबर 1, शराब बनाने वाला, उस पर भी लानत है, बनवाने वाला, इस पर भी लानत, पीने वाला, उस पर भी लानत, उठाने वाला, उस पर भी लानत, उठवाने वाला, उस पर भी लानत, पिलाने वाला, उस पर भी लानत, बेचने वाला, उस पर भी लानत, इसकी कीमत खाने वाला, उस पर भी लानत,
खरीदने वाला उस पर भी लानत और खरीदवाने वाला उस पर भी लानत की गई है। इमाम मोहम्मद बिन उस्मान अज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताबुल कबायर में फरमाते शराबी फासिक को मलून होता है, यानी लानती होता है, फासिक गुनागार होता है, जैसा कि अल्लाह ताला और इसके रसूल ने इस पर लानत फरमाई है। बस अगर किसी ने शराब बनाने की नीयत से कोई ऐसी शे खरीदी जिससे शराब बनाई जाती है तो वो एक मरतबा मलून होगा, और अगर उसने इस शे से शराब तैयार कर ली तो वो दो मरतबा मलून यानी लानती होगा, और अगर तैयार करने के बाद किसी दूसरे को पिलाई तो तीन मरतबा लानती होगा। अल्लाह करीम हम सबके हाल जात पर रहम फरमाए, और इस शराब की और दीगर जो हराम जराए आमदनी के उसे बचने की तौफीक अता फरमाए, कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। ऐसा ना हो कि हम कब्र में जाएं पास वाला मुर्दा कहे कि क्या तूने मेरे मरने से भी सबक हासिल ना किया, मैं तो तुझसे पहले चला गया था, मेरे मरने से ही नसीहत दे लेता कि मैं नेक अमाल कर लूं। मुर्दे की ऐसी पुकार सुने तो यहां बदल जाए, हम खुद को नेकी की तरफ लाएं, परहेजगारी की तरफ लाएं, तकवे की तरफ लाएं, और खुदारा इस मैसेज को आम करें। नॉर्मली मस्जिद में बयान सुनने वाले, मस्जिद में आकर वक्त गुजारने वाले, नॉर्मली जनरली बात कर रहा हूं, उनमें तादाद इन चीजों में मुतला नहीं होती, ज्यादातर 100% नहीं कह सकते, तो वो और दीगर सुनने वालों को चाहिए कि वो अल्लाह के और उसके प्यारे हबीब के इस पैगाम को आम करें, तबलीग करें, नेकी की दावत दें। जैसे घर जाएंगे तो आप इन चीजों को रिवाइज करें, भूल ना जाएं, क्योंकि हम भूल जाते हैं बहुत ज्यादा, खुद बच जाते हैं और मैसेज कन्वे नहीं करते, जिसकी वजह सोसाइटी में बेहतरी नहीं आती। बहुत सारे बुरे लोग हैं जो मार्केटों में बैठे हुए हैं, गलियों में बैठे हुए हैं, बाजारों में बैठे हुए हैं, रोडों में बैठे हुए हैं, वो आप में से कई लोगों के कांटेक्ट में आते होंगे। इनको समझाएं, इनको अल्लाह से डराएं। आप कहेंगे हमें नहीं आता, तो इनको बयानात की कैसेटे दें, इनको ऑडियो वीडियो कैसेटे दें, मतलब बयानात दें, इनको नेक लोगों के पास लेके जाएं, इनको शफकत और मोहब्बत के साथ मस्जिद का रास्ता दिखाएं, ताकि ये लोग बदले। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, ना जहर बनाए कि ये बदलेगा नहीं, ये मानते नहीं है। मनवाना आपका काम है भी नहीं, मनवाना मेरा काम भी नहीं, मनवाना तो किसी नबी का भी मनसब नहीं था। हमारा काम तो सही पहुंचाना है, मनवाना हमारा काम नहीं है, हम पहुंचाने वाले बने। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर एक ही आया तो, है ना। हिकमत के साथ, नरमी के साथ, तदब्बुर के साथ, दर्द के साथ, सिर्फ अपनी औलाद का दर्द ना हो, उम्मत का दर्द पैदा करें, सिर्फ औलाद का दर्द, अपनी फैमिली का सिर्फ दर्द ना लें। घर तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी है, और इन जैसा घर तो कायनात में किसी का था ही नहीं, ना होगा। सिद्दीक अकबर की भी फैमिली थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उम्मत का दर्द। फारूक आजम की भी फैमिली थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उम्मत का दर्द। वो सहाबाए कराम को याद करे जिनकी फैमिली थी, जिनकी बीवी बच्चे थे, पूरा घर था, फिर भी अल्लाह की राह में ही आते थे, शहीद हो जाते थे उम्मत के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए। अपना घर बार, कारोबार, महिला, इलाका, मुल्क, शहर सब छोड़ देते थे अल्लाह के लिए, दीन के लिए, रसूल पाक के दीन की सरबुलंदी के लिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इन्होंने अपने पूरे घर के साथ शहादत, यानी कितने घर के अफराद थे, कई घर के अफराद है जिनके साथ आपने शहादत पाई, किसके लिए? दीन के लिए, इस्लाम के लिए, नाना के दीन के लिए। सिर्फ अपनी फैमिली का तो नाना सोचा मैं अपनी फैमिली को लेकर मैं सेफ साइड ले लूं। करबला के मैदान में खड़े हुए हैं ना, आपके सामने दुश्मनों की पूरी फौज थी और आप यकीन कर चुके थे कि मैं शहीद हो जाऊंगा, आपके साथ आपके लोग थे, आपके रुफका थे, आपके बेटे शहीद हुए, भाई शहीद हुए, भतीजे शहीद हुए, भांजे शहीद हुए, जाने कुर्बान की हमारे बुजुर्गों ने, अकाबिरीन ने, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने, फैमिली के साथ कुर्बानियां दी हैं। फैमिलीज के साथ, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं जिए हमारे सहाबा, सिर्फ अपने लिए नहीं जिए हमारे सहाबा, माल कमाने के लिए सिर्फ नहीं जिए हमारे सहाबा, हमारे बुजुर्गों ने दीन, इन्होंने दीन के लिए अपनी जिंदगियां वफ की हुई थी। इनके साथ साथ इनकी फैमिली भी चल रही थी, इनका माल भी चल रहा था, इनका कारोबार भी चल रहा था, मगर जिंदगियां इबादत के साथ थी। इनका घर में वक्त देना भी इबादत था, नेक अमाल के साथ घर में वक्त देते थे, ये नेक अमाल के साथ कारोबार को वक्त देते थे, ये नेक अमाल के साथ अपने दीगर काम करते थे। इन्होंने अपने अमाल को बेहतर किया, अपनी नेकियों को बेहतर किया, और ये थे बेहतर, क्योंकि हर साहबी है ही जन्नती, यकीनन जन्नती, हर साहबी है नबी जन्नती जन्नती। और दीगर बुजुर्गों ने दीन को देखे, आप सबके बारे में गौर करें एक बार, जितने भी दुनिया भर में देख और सुन रहे हैं, इतने मुहदिसीन जो हदीसें बयान करने वाले चले गए, इनकी फैमिलीज थी नहीं थी, शादियां की थी इन्होंने, बच्चे थे इनके, घर था, जरा आमदनी बना देते। ये अल्लाह के नेक बंदे, मुत्तकी परहेजगार थे, ये मांग कर गुजारा नहीं करते थे मेरे प्यारे सैन भाइयों। इनको पता था कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, मगर इनकी जिंदगियां अल्लाह ताला के दीन के लिए थी, और साथ इनके घर भी चलते थे। और आज इनकी इज्जतें, इनके नाम है, इनके मकाम है, जब हम इनका जिक्र सुनते तो कहते रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके मजारात हैं, बादशाहों की कब्रों पर कव्वे बीट करके चले जाते हैं, और इनके मजारों पर इंसान जा जाकर फूलों की चादरें चढ़ाते हैं। वो तबका जिनकी कब्रें मिट गई, निशान मिट गए, दौलतमंदों की कब्रों के निशान मिट गए, बादशाहों की कब्रों के निशान मिट गए, अरबाब इख्तदार की कब्रों के निशानात मिट गए, लेकिन औलिया कराम के मजारात आज भी कायम है, इनकी यादें आज भी कायम है। उन बादशाहों के, उन मालदारों के तस्करे पढ़कर लोग इबरत लेते हैं, और इनके तस्करे पढ़कर लोग जिंदगी गुजारने का सबक लेते हैं। कितना फर्क है, और ये बहुत वाज़ह चीजें हैं, मगर हम इनको भूल बैठे। हमने खुद को दुनिया के सुपुर्द कर दिया, कमाने के सुपुर्द कर दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस जो मुझे इस बयान के दौरान याद आ रही है कि एक वक्त आएगा कि लोग ये सोचना छोड़ देंगे कि माल हलाल से कमाया कि हराम से कमाया। हाय क्या दौर आ गया। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे, सही तौर पर तवक्कुल करे अपने रब पर। आमीन बिजाहि नबीयिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।